हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक वही खड़ी रह गई। उसके हाथ से बंदूक धीरे धीरे नीचे झुक गई। आदित्य के शब्दों में अपने दादा के लिए जो मोहब्बत और डर था वो साफ झलक रहा था, और पहली बार उसके दिल में भी हल्की सी बेचैनी उतर आई। अब झलक को काफी हद तक बुरा लग रहा था। उसका इरादा बिल्कुल भी दादाजी को किसी तरह की तकलीफ देने का नहीं था, तो फिर आदित्य इस तरह की बात कैसे कर सकता है? उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। वो देर तक बिस्तर पर बैठी सोचती रही। अंदर ही अंदर अपराध बोध और गुस्सा दोनों आपस में टकरा रहे थे। अगली सुबह होते होते खबर घर तक पहुंच चुकी थी कि बलबीर राणा को हार्ट अटैक आया है और वे अस्पताल में एडमिट हैं। दिग्विजय सिंह जी को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने खुद को ही इसका जिम्मेदार मान लिया। उनके चेहरे पर ग्लानी साफ झलक रही थी। वो जल्दी से झलक के कमरे में पहुंचे और धीमी आवाज में बोले, बेटा, अगर इसमें किसी की गलती है तो वो मेरी है, सिर्फ मेरी। ये कहकर उन्होंने आदित्य और बलबीर के साथ हुई सारी बातचीत, अपने इरादे और जल्दबाजी की वजह भी झलक को साफ साफ बता दी। अब झलक को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। सच में इस पूरे खेल में वो और आदित्य दोनों ही कहीं ना कहीं फंस गए थे। न उसे पूरी सच्चाई पता थी, न ही आदित्य को। झलक ने भारी आंखों से दादाजी को देखा और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जिंदगी में किसी आदमी को लाने की दादाजी? अभी कितने दिन हुए हैं, और क्या एक औरत की जिंदगी बिना आदमी के अधूरी होती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर किसी औरत को कोई गहरा जख्म लगे तो सिर्फ एक आदमी ही उस पर मरहम लगा सकता है? नहीं दादाजी, आपको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। मेरी जिंदगी में मुझे कभी किसी मर्द की जरूरत नहीं है, और प्लीज इस बारे में सोचना भी छोड़ दीजिए कि मेरी जिंदगी में कभी कोई मर्द आएगा। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसके भीतर छिपा दर्द भी साफ महसूस हो रहा था। ये सुनते ही स्नेहा, सौरभ और घर के बाकी लोगों के चेहरे उतर गए। झलक ने सबकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, अगर आपने फिर कभी इस तरह की कोई कोशिश की तो मैं यहां से इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप में से कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ये कहकर उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और सीधा बाहर निकल गई। गाड़ी स्टार्ट की और बिना किसी की ओर देखे निकल पड़ी। दिग्विजय सिंह जी वहीं खड़े रह गए। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने सोचा था कि धीरे धीरे आदित्य और झलक को करीत लाएंगे, शायद अतीत में जो जख्म उसे सिद्धार्थ की वजह से मिले थे वे धीरे धीरे भर जाएंगे, लेकिन झलक के इस रवैये ने तो जैसे उनकी सारी उम्मीदों पर ताला लगा दिया। तभी अनामिका आगे आई। उसने दादाजी का हाथ थामकर कहा, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। अभी फिलहाल हमें झलक को अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर हम इस तरह उस पर दबाव डालेंगे तो हो सकता है वो फिर से खुद को अकेला महसूस करने लगे। बहुत मुश्किल से हमने उसे संभाला है दादाजी। अनामिका की बात सुनकर दिग्विजय सिंह जी गहरी सोच में पड़ गए। फिर बोले, सबसे पहले मुझे बलबीर से मिलने अस्पताल जाना होगा। न जाने इस वक्त आदित्य और बलबीर पर क्या बीत रही होगी। ये कहकर वे अस्पताल की ओर निकल पड़े। उधर झलक के दिमाग में अभी भी आदित्य की कई बातें घूम रही थीं। अगर मेरे दादा को कुछ हुआ तो, ये शब्द उसे भीतर तक चुभ रहे थे। ऑफिस जाने के बजाय उसने भी गाड़ी मोड़ी और सीधा अस्पताल की ओर चल दी। अस्पताल में इलाज के बाद बलबीर जी को हल्का हल्का होश आ चुका था। अभी भी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। आदित्य उनके पास बैठा उनका हाथ थामे हुए था। कमजोर आवाज में बलबीर जी बोले, बेटा, हमें माफ कर देना। हमें नहीं पता था कि झलक तुम्हें पसंद नहीं करती। हमें लगा तुमने पहली बार किसी लड़की का नाम लिया है तो शायद वो भी तुम्हें पसंद करती हो। हमें अंदाजा नहीं था बच्चे, हमें माफ कर देना। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। आदित्य ने तुरंत उनका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, आप ऐसा मत कहिए दादाजी, गलती मेरी थी। मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। जब आपने झलक से शादी की बात की तो मैं भावुक हो गया था, शायद उसी गुस्से में आपसे बहस कर बैठा। दोनों के बीच भावनाओं का सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कबीर की तेज आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे पर खड़ी झलक को देख लिया था। झलक अनजाने में उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। कबीर गुस्से में बोला, यहां क्या करने आई हैं आप? हमारी बेइज्जती करके आपका दिल नहीं भरा क्या? झलक ने बस उसे घूर कर देखा। उसकी नजरों में जवाब था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा,
वो ठिठक गया। झलक को वहां देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। झलक धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में फलों से भरी टोकरी थी। उसने उसे बलबीर जी के पास रख दिया। दिग्विजय सिंह जी भी वहीं पहुंच चुके थे और हैरानी से ये सब देख रहे थे। झलक ने आदित्य की ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मिस्टर राणा, प्लीज आप यहां से उठ जाइए। आदित्य को ये बात चुभी। कल रात वो उसे धमकी देकर आया था और आज वही लड़की उसे उसके दादा के पास से हटने के लिए कह रही थी। लेकिन बलबीर जी की हालत देखते हुए और ना चाहते हुए भी आदित्य धीरे से उठ गया। झलक तुरंत उनकी जगह बैठ गई। उसने बहुत हल्के से बलबीर जी का हाथ अपने हाथों में लिया और धीमी आवाज में बोली, दादाजी, आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती मेरी भी थी। मैंने बात कहने का तरीका गलत चुना, लेकिन मेरा इरादा कभी भी आपको तकलीफ देने का नहीं था, कभी भी नहीं। आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने ओवर रिएक्ट किया, गलती मेरी ही थी। बेकार में सोच सोच कर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए दादाजी। जैसे ही झलक ने शांत लेकिन साफ आवाज में ये कहा, आदित्य पूरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वही लड़की है जो कल रात आग की तरह भड़क रही थी। वहीं बलबीर जी हैरानी से बोले, लेकिन बेटा, दिग्विजय की बातें सुनकर तो मुझे लगा था कि शायद तुम भी आदित्य को पसंद करती हो, इसीलिए मैं उसका रिश्ता लेकर वहां आया था। झलक ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब ठंडी थी मगर शब्द बिल्कुल स्पष्ट। शादी, रिश्ता, प्यार, इन सब चीजों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है दादाजी। मैं यहां शादी से इनकार करने के लिए सॉरी बोलने नहीं आई हूं। मैं यहां आपके सामने आपके पोते से ऊंची आवाज में बात करने के लिए माफी मांगने आई हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप अपने पोते से कितना प्यार करते हैं, और अगर कोई आपके सामने उससे तेज आवाज में बात करे तो आपको बुरा लगेगा। उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात साफ कर दी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आदित्य और बलबीर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी दरवाजा खुला और दिग्विजय सिंह जी तेजी से अंदर आए। उन्होंने नीचे पार्किंग में झलक की गाड़ी देखी थी और उनके मन में डर था कि कहीं झलक फिर कोई कड़वी बात न कह दे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर आकर झलक की बातें सुनी, उनका चेहरा हल्का पड़ गया। राहत साफ दिख रही थी। उन्होंने गला साफ किया और बनावटी सहजता से बोले, अरे झलक बेटा, तुम यहां? बहुत अच्छा किया, बलबीर को देखने आ गई। मैं तो तुम्हें फोन ही करने वाला था। अच्छा, एक काम करो, तुम जाओ अपना बचा हुआ काम पूरा करो, और वैसे भी तुम्हें ऑक्शन की तैयारी करनी है ना। झलक ने एक पल दादाजी को देखा, फिर बिना कुछ कहे चश्मा ठीक किया और धीरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कमरे का माहौल बदल गया। बलबीर जी तुरंत दिग्विजय की ओर मुड़े और बोले, ये सब क्या था दिग्विजय? तूने मुझे क्या बताया था और यहाँ क्या हो गया? क्या तूने बच्चों से पहले बात नहीं की थी? लड़की को देखकर तो लगता है कि प्यार, मोहब्बत, शादी, इनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है।
आदित्य भी अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने तीखी नजरों से दिग्विजय सिंह जी को देखा और बोला, आखिर आपने मेरे दादाजी को क्या समझाया था जो रिश्ता लेकर आपके घर पहुंच गए? हमें लगा था कि दो पुराने दोस्त मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं भी साथ चला गया। मुझे क्या पता था कि वहां जाकर इस तरह की बात होगी। दिग्विजय सिंह जी ने आदित्य को डांटना चाहा, तुम्हें इस तरह अपने बड़ों से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आदित्य का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। तभी बलवीर जी ने हाथ उठाकर दोनों को शांत किया और दिग्विजय की ओर देखते हुए बोले, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, शायद गलती मेरी भी है। तूने जो कहा मैं उसे सही से समझ नहीं पाया, शायद इसी वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर मल्होत्रा? दिग्विजय सिंह जी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। मैं सिर्फ अपनी पोती की जिंदगी में प्यार लौटते हो देखना चाहता था। बस इसी वजह से सोचा कि अगर तुम्हें और झलक को धीरे धीरे मिलवाया जाए, साथ समय बिताया जाए, तो शायद तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा हो जाए। इसी कारण मैं आदित्य को बार बार झलक के करीब लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बलबीर, तूने इतनी जल्दी रिश्ता लेकर पहुंचकर सब कुछ बिगाड़ दिया। बलबीर जी थोड़ा असहज होकर बोले, यार, कम से कम साफ साफ बता देता कि तेरे मन में क्या है। और मुझे समझ नहीं आता कि झलक बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसे शादी प्यार से इतनी नफरत है। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। दिग्विजय सिंह जी ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, ये मैं तुझे नहीं बता सकता कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। बस इतना समझ ले, ये उसकी दूसरी जिंदगी है। उसकी पहली जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये सुनते ही आदित्य के कान खड़े हो गए। उसके चेहरे का गुस्सा पल भर के लिए हैरानी में बदल गया। दूसरी जिंदगी? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वो कुछ और पूछना चाहता था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज की टनटन हुई। उसने अनमने ढंग से स्क्रीन की ओर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया।